एक्सीडेंट के बाद आरव की सर्जरी चल रही थी, जो कि अयान हैंडल कर रहा था। अयान ने आयु को अंदर आने से मना कर दिया था। बाहर बैठे हुए आयु के दिमाग में छवि की बातें घूम रही थी। उसे भी सब समझ आ गया था कि आरव के एक्सीडेंट के पीछे फैज का हाथ है। आयु फैज से मिलने उसके रूम में पहुंची। उसकी सिक्योरिटी के लिए कबीर भी उसके साथ था। पहले कबीर बाहर अब्बास के साथ लगा हुआ था, तब आयु रूम के अंदर आई। वो कमरे में फैज के साथ अकेली थी। फैज ने देखा आयु का चेहरा और आंखें रोने की वजह से लाल थे। वो फैज के बेड के पास गई और धीरे से बोली, कैसे हो तुम? फैज ने अपनी पलकें झपका दी। आयु एक डॉक्टर थी, तो जाहिर सी बात थी कि अपने पेशेंट को तकलीफ में देखकर उसे भी बुरा महसूस होता था। फैज को उस हाल में देखकर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। आयु ने आगे कहा, मैं जानती हूँ उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, पर तुमने भी तो मेरे साथ गलत किया था। तुम्हें उस रात मेरे साथ चेंजिंग रूम में वो सब नहीं करना चाहिए था। किसी को उसकी परमिशन के बिना छूना गलत होता है। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर क्या है, पर मैं सिर्फ आरव से प्यार करती हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरी बहन की मौत हुई तो मेरे पास जीने का एक मकसद था, उसकी मौत का बदला लेना। अगर मेरे आरव को कुछ हो गया फिर तो मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। मैं तुम लोगों की तरह माफिया में नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी से बदला लेना है। बस एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज हमारी लाइफ से दूर रहो तुम। फैज काफी शांति से आयु की सारी बातें सुन रहा था। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आवाज धीमी और भारी थी। ऐसे लग रहा था जैसे अगले ही पल रो देगी। फैज आयु को तो कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन उसने अपने मन में सोचा, इतने प्यार से रिक्वेस्ट करने के लिए आई हो, कुछ और मांगा होता तो उसी पल दे देते। लेकिन अब जो मांग रही है वो हमारे लिए देना मुमकिन नहीं है। आपने जिस तरीके से छवि सिंघानिया के साथ बदतमीजी की थी, एक पल के लिए लगा था कि हमने आपको गलत समझ लिया, लेकिन आप तो उतनी ही मासूम निकली। अपने दुश्मन के सामने कौन इतने प्यार से रिक्वेस्ट करता है? आयु कुछ पल चुप रही। उसकी नज़र फैज को मॉनिटर कर रही मशीन पर गई। उसे देखने के बाद आयु ने कहा, तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। आई होप तुम्हारे थॉट्स अच्छे ही हों। अपनी बात कहकर आयु वहां से जाने को हुई। उसे रोकने के लिए फैज की उंगलियों में मूवमेंट हो रही थी। ये एक अच्छा साइन था, लेकिन आयु की उस पर नज़र नहीं गई। फैज से बात करने के बाद आयु जैसे ही पलटी, सामने कबीर खड़ा था। कबीर ने पहले आयु की तरफ देखा। वो चेहरे से काफ़ी परेशान लग रही थी। उसने फिर फैज की तरफ देखा। फैज की तरफ देखते ही कबीर के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो वहीं से तेज आवाज में बोला, आप गलत जगह पर अपनी बात रखने आई हैं मैम। माफिया वर्ल्ड में रिक्वेस्ट, माफ़ करना या किसी पर दया दिखाने जैसी कोई फीलिंग नहीं होती है। यहाँ सिर्फ होता है एक दूसरे से आगे रहना और दूसरों को पीछे करने के लिए हर हद से गुजर जाना। यहाँ होता है बदला, जहाँ सामने वाले को इतनी बुरी मौत दी जाती है या उसकी ज़िंदगी मौत से बदतर कर दी जाती है कि वो अपने किए हुए हर गुनाह को आखिरी वक्त तक याद करता है। बोलते हुए कबीर की आवाज़ काफ़ी सख्त थी। वो फैज की तरफ देखकर बात कर रहा था। कबीर की बातों से आयु समझ गई थी कि उसने अभी अभी फैज को जो कहा है वो सब व्यर्थ था। कबीर फैज के पास चलकर आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हो जो तुम्हारी आंखें ही ना रहीं और तुम इन आंखों से कोई इशारा ना कर पाओ फैज खान? फैज पर कबीर की बात का कोई असर नहीं हुआ और उसने आईज रोल की, लेकिन आयु कबीर की बात सुनकर घबरा गई थी। उसने कबीर का हाथ पकड़ा और झट से कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे ओके? पहले ही आरव इसका ये हाल कर चुका है, जिसका बदला ये हमसे ले रहा है। ऊपर से तुम भी ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसके बाद इसकी पूरी माफिया फैमिली हमारे पीछे हो जाएगी। आरव ठीक हो जाएगा, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना है। कबीर को आगे कुछ कहने का मौका नहीं मिला। आयु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती वहां से ले गई। फैज सर्द निगाहों से आयु के हाथ की तरफ देख रहा था, जिससे उसने कबीर को पकड़ा था। वो अपने मन ही मन बड़बड़ा कर बोला, हमें आपकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं जब आप किसी गैर मर्द को छूती हैं। कोई बात नहीं, जब हम ठीक हो जाएंगे और आप हमारे पास आएंगी तो आपकी हर बुरी आदत छुड़ा देंगे हम। कबीर आयु को लेकर वहां से चला गया और वो वापस ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ गए थे। उनके पास अयान के वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अंदर क्या चल रहा था इस सबसे अनजान, बाहर सब अपने तरफ से प्रार्थना करने में लगे थे। सर्जरी को शुरू हुए लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका था। बीच सर्जरी में हार्ट मॉनिटरिंग मशीन में बीप का साउंड आने लगा। इसका मतलब साफ था कि आरव की हार्ट बीट रेट गिरने लगी थी। अयान ने मशीन की तरफ देखा और फिर डॉक्टर सिद्धि पर चिल्लाकर बोला, मैंने तुम्हें कहा था मशीन मॉनिटर करते रहना, इतना सा काम दिया था वो भी तुमसे नहीं हो रहा है। एईडी मशीन रेडी करो क्विक, हार्ट रेट गिर रही है। सर ये जल्दबाजी होगी, एईडी मशीन यूज करने का टाइम नहीं हुआ है वो हम। सिद्धि उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अयान तेज आवाज में बोला, जितना कहा है उतना करो, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सिद्धि ने उसकी बात पर हामी भरी और जल्दी से मशीन रेडी करने लगी। अब अयान को आरफ की हालत समझ आ रही थी, जब कुछ महीनों पहले आरफ की जगह वहां अनु थी। नहीं, मैं तुम्हारी तरह अपना पेशेंस नहीं खो सकता, मुझे भाई को बचाना होगा। जो गलती तुमने की वो मैंने कर दी, तो फिर मैं हमेशा के लिए इन्हें खो दूंगा और तुम्हें भी, अयान ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा। और फिर मशीन के चार्ज होने पर उसे आरफ के चेस्ट पर एक बार रखा। एक झटके में उसकी हार्टबीट वापस लौट आई थी और अयान अपने काम में लग गया था। आरफ की सर्जरी शुरू हुए लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा का टाइम होने को आया था और अब आयु से सब्र नहीं हो रहा था। वो अपनी जगह से उठी और ओटी की तरफ जाते हुए बोली, सर्जरी मत करने दो, पर अंदर आने का हक मुझे है, मुझे मेरे आरफ को देखना है। इतनी लंबी सर्जरी नहीं चलती है, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। आयु भीगी आंखों सिर्फ ओटी की तरफ जा रही थी। तभी ओटी का दरवाजा खुला और अयान बाहर था। अयान ने अपना मास्क निकाला और हल्का मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसके हाँ कहते ही आयु उसके गले लग गई और जोर से रो रही थी। अब रोना बंद भी करो, वो बिल्कुल ठीक है, उनकी सिचुएशन स्टेबल है। हाँ, होश आने में कुछ दिनों का टाइम लग सकता है, तो तुम्हें पेशेंस रखना होगा, अयान ने आयु को सहलाते हुए धीरे से कहा। आयु ने अयान की बात पर हाँ में सिर हिलाया। उसने अभी भी ऑपरेटिंग ड्रेस ही पहना था, अब वो और वेट नहीं कर सकती थी। आयु उसी वक्त ओटी के अंदर चली गई। आयु के अंदर जाते ही कबीर भी वहां से निकल गया। आरफ के ठीक होते ही वो बेफिक्र था और अब उसे उसकी इस हालात का बदला लेना था। वैसे भी माफिया की दुनिया में किसी को संभलने के लिए टाइम नहीं दिया जाता था और वो टाइम कबीर अब्बास को नहीं देना चाहता था। आरफ की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी और अब वो हर खतरे से बाहर था। अयान ने बाहर आकर जैसे ही ये बात बताई, आयु झट से अंदर चली गई।
वैसे तो इस तरह सर्जरी के बाद किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आयु ने पहले ही सर्जरी के लिए चेंज कर रखा था। ऊपर से वो डॉक्टर भी थी, तो अयान ने उसे नहीं रोका। अंदर आते ही आयु ने देखा आरफ के पैर पर चोट लगी हुई थी और उस पर प्लास्टर लगा था। उसके हाथों पर हल्की फुल्की चोट आई थी, जबकि ज्यादा हेड इंजरी होने की वजह से माथे पर पट्टियां बंधी हुई थी। ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए उसे ऑक्सीजन पाइप्स लगे हुए थे। आरफ को उस हालत में देखकर आयु फिर से रोने लगी। तभी डॉक्टर सिद्धि उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डोंट वरी, ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। तुम खुद डॉक्टर हो तो समझ सकती हो। हाँ, होश आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर बाद में रिकवर जल्दी कर लेंगे। मुझे कुछ देर इसके साथ अकेले रहना है, आयु ने कहा, तो डॉक्टर सिद्धि वहां से चली गई। बाकी के ऑपरेटिंग स्टाफ पहले ही जा चुके थे। अंदर आते ही आयु वहां लगी चेयर पर बैठ गई और उसने आरफ का हाथ अपने हाथ में लिया। आयु आरफ का हाथ सहलाते हुए बोली, तुम बहुत जिद्दी हो, अगर तुम्हारी जगह यहां पर मैं होती फिर तुम्हें पता चलता कि कितना मुश्किल होता है बार बार हमारे अपनों को इस बेड पर देखना। तुम तो मुझे सुन भी नहीं पा रहे, फिर मैं क्यों तुमसे शिकायतें कर रही हूँ। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ, जानते हो ना, तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए अब मुश्किल होने लगा है। आयु काफी देर तक वहां पर बैठी रही, जबकि बाहर अयान ने सबको आरफ के ठीक होने की बात बता दी थी, तो सबने राहत की सांस ली। आरफ की सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद अब वहां गौरवी जी, रुद्र और साक्षी के अलावा कोई नहीं रुका था, सब घर को चले गए थे। दूसरी तरफ कबीर हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आ गया था। वो अच्छे से जानता था कि अब्बास को फैज के पास से हटाना आसान नहीं रहने वाला है, इसलिए उसने अपना तरीका अपनाते हुए खान को कॉल किया। कबीर का कॉल देखकर खान समझ चुका था कि उसने कॉल क्यों किया होगा। आरफ के एक्सीडेंट की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। उसने कॉल रिसीव करते ही कहा, देखो जो बात है मिलकर करते हैं। मुझे पता है नाहर लूथरा आरव और उसकी पत्नी की सिक्योरिटी देख रहा है। अंडरवर्ल्ड रूल्स के हिसाब से जब तक बात गंभीर ना हो कोई इस तरह किसी पर अटैक नहीं कर सकता। रूल हमारी तरफ से टूटा है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, फिर अब्बास को आज रात मीटिंग के लिए बुलाओ। मीटिंग की जगह मैं तय करूंगा और वो वहां पर होना चाहिए, कबीर ने शांति से जवाब दिया। खान भी खुश था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कबीर और लूथरा फैमिली शांति से समझौता करने के लिए तैयार है। उसने कबीर की बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। कबीर से बात हो जाने के बाद खान ने अब्बास को उस मीटिंग के बारे में बताया। अब्बास अच्छे से समझ गया था कि कबीर वो मीटिंग क्यों रखना चाहता है। उसने फैज को मीटिंग के बारे में बताते हुए कहा, मुझे अब गुस्सा आ रहा है, हम उन्हें बता क्यों नहीं देते हमने कोई रूल नहीं तोड़ा है। सबसे पहले उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया था, उनके उस एक्शन के रिएक्शन में हमने आरफ खुराना का वो हाल किया है। उसकी किस्मत अच्छी है जो वो बच गया, लेकिन अस्पताल में रहते हुए मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। उसकी पत्नी और भाई उसे कब तक बचाएंगे, सुना है उसे अब तक होश नहीं आया। और आप कुछ भी कहिए, मैं आज खान को बता दूंगा कि आरफ खुराना ने आपके साथ क्या किया। अब्बास बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो एक सांस में काफी कुछ बोल गया। वो फैज की आंख के इशारे का इंतजार कर रहा था, तभी उसने देखा कि फैज धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठा रहा था। ये देखकर अब्बास को बहुत खुशी हुई और वो हैरानी से बोला, अब आप ठीक हो रहे हैं, मुझे तो पहले ही पता था इस अस्पताल के डॉक्टर से कुछ नहीं होने वाला। हमारी अम्मी ने पहले कहा था ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ काफ़ी अच्छे से असर करती हैं, और देखिए आप ठीक हो रहे हैं। मैं आपके लिए पेन और पेपर लेकर आता हूँ, क्या आप लिख पाएंगे। फैज ने हामे पल के छपकाई। यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, फैज के राइट हैंड में मूवमेंट शुरू हुई थी जबकि वो लेफ्टी था। जैसे तैसे करके उसने टूटी फूटी हैंड राइटिंग में 2 लाइन्स लिखी। अब्बास उन्हें पढ़ते हुए बोला, पापा को पता चला तो वो आयू को मार देंगे। फैज ने इतना ही लिखा था। उसे पढ़ने के बाद अब्बास के चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव थे। वो सिर हिलाकर बोला, वो लड़की आपके प्यार के लायक नहीं है। मुझे ये बताइए कि मैं आगे क्या करूं। अगर मैं मीटिंग में गया तो कबीर जरूर मुझ पर हमला करेगा। तुम मत जाओ, फैज ने सीधे सीधे लिखा। अब्बास ने उसकी बात पर हामी भरी। रात को तय समय पर मीटिंग एक होटल में रखी गई थी, जहां पर प्लान के मुताबिक अब्बास आया ही नहीं था। कबीर पहले से ही जानता था अब्बास नहीं आएगा, इसलिए उसने अपनी जगह अपने किसी आदमी को भेजा था। लगभग 2 घंटे वेट करने के बाद भी अब्बास और कबीर दोनों ही नहीं पहुंचे तो खान ने गुस्से में मीटिंग ही कैंसिल कर दी थी। वहीं रात के वक्त कबीर अयान के पास उसके केबिन में था और उसे सब कुछ बता दिया कि इन सबके पीछे फैज का हाथ है। तो अब क्या करना है? तुमने उसे मारने को कहा था, लेकिन वो तो सिक्योरिटी से बाहर ही नहीं निकल रहा, अयान ने हैरानी से पूछा। अगर बाहर नहीं निकल रहा तो पकड़कर बाहर ले आऊंगा। मैंने प्रिंस से बात करके सभी सीसीटीवी कैमरा अपने हिसाब से मैनेज करने को कहता हूँ। बस तब तक आरफ सर के रूम की सिक्योरिटी 1% भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। उन्हें होश आने में कितना टाइम लगेगा? कबीर ने अपने नेक्स्ट स्टेप उठाने के पहले आरफ के बारे में पूछा। लगभग 3 दिन से 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है। जो भी हो तुम करो, मैं देख लूंगा। मेरे भाई को इस हाल में पहुंचाने वाले के लिए मेरे दिल में भी कोई इमोशंस नहीं है, अयान ने सख्त लहजे में जवाब दिया और वहां से चला गया। अयान की तरफ से परमिशन मिलने के बाद कबीर भी बेफिक्र हो चुका था। उसने अब्बास को 24 घंटे का टाइम दिया था, उनमें से 10 घंटे बीत चुके थे और अब एक्शन टाइम था।